ಹರಿಜನ ಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾಂ ಸಹಗಣಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ ನಮಃ ಓಂ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತಿ ನಾಮಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣೆ ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ. ಪಹಲೀ ಬಾರ ಯಹಾಂ ಮಂದಿರ್ ಮೇ ಆ ರಹೇ ಹೈ ಗೌರನಿತಾಯಿ ಮಂದಿರ್ ನಾಮ ದಿಯಾ ಹೈ ಕುಛ ವಿಶೇಷ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಧಾಮ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಧಾಮ ಮೇ ತೋ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಅಭಿ ಆನೆ ವಾಲೆ ಹೈ ಯಸ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಹೈ ನಾ ಡಿ ಟಿ ಎಸ್ ಕಾ ನಾಮ
ಅಭಿ ತಕ್ ರಖಾ ನಹೀ
ರಖಾ ನಹೀ ಆಯೆಂಗೆ ಲೇಕಿನ್ ಅಭಿ ಜೋ ಡಿ ಟಿ ಎಸ್ ಹೈ ವೋ ಹೋಂಗೆ ವೋ ಗೌರನಿತಾಯಿ ಕೆ ಹೀ ಹೈ ಬಡೆ ನಹೀಂ ನಯೇ ಮಂದಿರ ಮೇ ಅಭಿ
ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೈ ಓನ್ಲಿ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಗೌರನಿತಾಯಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಉತ್ಸವ
ತೋ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ನಾಮ ರಾಧಾ ನಹೀ ರಖಾ ಅಭಿ ತಕ್
ಗೋವಿಂದ ಧಾಮ್ ಕೆ ಊಪರ್ ಸೆ ಗೋವಿಂದ
ಗೋವಿಂದ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ
ಲೇಕಿನ್ ಅಭಿ ತಕ್ ನಹೀ ರಖಾ
ನಹೀ ರಖಾ ತೋ ಪಹಲೀ ಬಾರ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಧಾಮ ಮೇ ಆಯೇ ಹೈ ಅಬ್ ಸಬ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಹಾಲಾಂಕಿ ರಘುಪತಿ ಪ್ರಭು ನೆ ಹಮೇ ಫೋಟೋ ಬಹುತ್ ದಿಖಾಯೇ ಹೈ ಕಾಫಿ ಸಮಯ ಸೆ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಹಮಾರೆ ಮನ್ ಮೇ ಏಕ್ ಚಿತ್ರ ಥಾ ಫಿರ್ ಭಿ ಯೇ ಚಿತ್ರ ಹಮನೆ ನಹೀ ದೇಖಾ ಥಾ ಹಮನೆ ಸೋಚಾ ಥಾ ಕಿ ಏಕ್ ಹೀ ಸೂರಜ್ ಹೈ ಆಕಾಶ್ ಮೇ ಅಬ್ ದೇಖ್ ರಹೇ ಇತನೆ ಸಾರೇ ಸೂರಜ್ ಸಬ್ ಚಮಕ್ ರಹೇ ಹೈ ಸರ್ ಕಿತನೆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಹೈ ಇತನಾ ಸುಂದರ್ ವಾತಾವರಣ ಹೈ ಯಹಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಶ್ರಮ ಮೇ ಔರ್ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಅಬ್ ತಕ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ತೋ ಥೋಡಾ ಬಹುತ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾತಾವರಣ ಹೈ ಕಬ್ ತಕ್ ಯೇ ರಹೇಗಾ ಪತಾ ನಹೀ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಇಮಾರತೆ ಬನ್ತಿ ಜಾ ರಹೀ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಅಭಿ ತಕ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ತೋ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಹೀ ಅಚ್ಛಾ ವಾತಾವರಣ ಹೈ ಔರ್ ಆಶ್ರಮ ಭಿ ಕಾಫಿ ಬಡಾ ಹೈ ಜಿತನಾ ಹಮನೆ ಸೋಚಾ ಥಾ ಉಸ್ಸೆ ಕಾಫಿ ಬಡಾ ಹೈ ಏಕ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೈ ಯೇ ಔರ್ ಇತನೆ ಸಾರೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಯೇ ಭಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀ ತೋ ಆಜಕಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬಹುತ್ ಕಮ್ ಹೈ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೇ ಹೈ ತೋ ಕೇವಲ ಜ್ಯಾದಾ ಕರ್ಕೆ ಭಾರತ ಮೇ ಔರ್ ಥೋಡೆ ಔರ್ ದೇಶೋ ಮೇ ಇಧರ್ ಉಧರ್ ಹೈ ರೂಸ್ ಮೇ ಕಭಿ ಇಧರ್ ಉಧರ್ ಯಹಾಂ ವೈಸೆ ನಹೀ ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ನಹೀ ಮಿಲ್ತೆ ಕ್ಯೂಂಕಿ ವಿದೇಶೋ ಮೇ ಐಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಮ್ ಹೋತಿ ಜಾ ರಹೀ ಔರ್ ಮಾಯಾ ಬಹುತ್ ಪ್ರಬಲ ಹೈ ಮಾಯಾ ತೋ ವೈಸೆ ಸಬ್ ಜಗಹ ಹೈ ಪರಂತು ಭಾರತ ಮೇ ಅಭಿ ತಕ್ ಥೋಡಿ ಬಹುತ್ ತೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಚಿ ಹುಯಿ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಯದ್ಯಪಿ ಯಹಾಂ ಪೆ ದಿನ್ ಬ ದಿನ್ ಕಠಿನ್ ಹೋತೆ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ರಹನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಫಿರ್ ಭಿ ವಿದೇಶ ಕಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಯಹಾಂ ತೋ ಕಾಫಿ ಅಚ್ಛಾ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಯಹಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ರಹನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಾ ಸ್ಥಾನ ಹೈ ಔರ್ ಜಿತನಾ ಹೋ ಸಕೆ ಹಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ರಹನೆ ಕಾ ಹೀ ಪ್ರಯಾಸ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಆಜೀವನ್ ಹೋ ಸಕೆ ತೋ ಸಬ್ಸೆ ಅಚ್ಛಾ ಹೈ ಫಿರ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಶ್ರಮ ರಹಕ್ಕೆ ಹಮೇ ಕೋಯ್ ಡರ್ ನಹೀ ರಹತಾ ಹೈ ಕ್ಯೂ ನಹೀ ಡರ್ ರಹತಾ ಹೈ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ ಮೇ ಥೋಡ ಬಹುತ್ ಜಿಮ್ಮೇದಾರಿ ಬಹುತ್ ಹೋತಿ ಹೈ ಪಾರಿವಾರಿಕ ಜಿಮ್ಮೇದಾರಿಯಾ ಹೋತಿ ಹೈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯ ಹೋತೆ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ದೇಖ್ಭಾಲ್ ಕರ್ನಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಭಯ ಹೋತಾ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಕೈಸೆ ಚಲೇಗಾ ಉನ್ಕಾ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಲೇಕಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಶ್ರಮ ಐಸೆ ಕುಛ್ ನಹೀ ಹೈ निडर हम हो सकते हैं। रोहिणी तनय प्रभु के बारे में हमने सुना थोड़े दिन पहले, वैसे पहले से पता था कि तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले खबर तो सुनी। फिर हम सोच रहे थे कि भगवान ये नहीं देखते कौन ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, किसकी क्या आयु है, कम है, ज़्यादा है, भारतीय है, विदेशी है, बहुत ही सिंसियर भक्त है, नहीं है। भगवान की इच्छा अचिंत्य है, इसको हम समझ नहीं सकते हैं। सिंसियर भक्तों को भी वो अपने पास ले लेते हैं, बाकी सिंसियर भक्तों को रख देते हैं। जिसको लेते हैं, जिसको ले जाते हैं, जिसको रहने देते हैं, वो हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए हमें ब्रह्मचारी आश्रम में भी और भी गंभीरता से रहना चाहिए, क्योंकि समझना चाहिए कि हम ब्रह्मचारी बन गए या हम अभी तक बहुत तरुण हैं, तो अभी हमारे लिए ऐसे कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम जानते हैं कि हम पूरी तरह से श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर हैं और हमें किसी चीज़ की आसक्ति नहीं है संसार की चीज़ों के प्रति, इसलिए हम निडर हो सकते हैं। जब भगवान बुलावा देते हैं तो हम तैयार हैं जाने के लिए, यदि भगवान वही चाहते हैं तो हम जाएंगे। आमतौर से जब आयु कम रहती है तो हम कल्पना नहीं करते, विचार नहीं करते हैं इन चीज़ों के बारे में। हमें लगता है कि ये तो बुढ़ापे की बात है, अभी हम लोग इतने तरुण हैं, अब ऐसी अवस्था में ये सब बातें क्यों सोचनी चाहिए। लेकिन ये संसार ऐसे है कि हर एक व्यक्ति को गंभीर कराता ही कराता है कि नहीं, चाहे आयु कितनी भी क्यों ना हो, मृत्यु आएगी, कभी ना कभी तो आएगी, सभी को आएगी। तो ब्रह्मचारी आश्रम में हमें पूरी तरह से निडर होके रहना है, जो होगा सो होगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को पहले वैदिक संस्कृति में ब्रह्मचारी आश्रम में जाना पड़ता था, भले वो राजा का पुत्र क्यों ना हो या रंक क्यों ना हो, सारे बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था। और गुरुकुल कहाँ होते थे? जंगल में होते थे। जंगल में रह के विद्यार्थियों को, छात्रों को गुरु की सेवा के लिए जंगल में जाना पड़ता था। कभी कभी अरणी लकड़ी लाने के लिए, कभी और चूल्हा के लिए लकड़ी लाने के लिए, कभी कुछ फल फूल लाने के लिए अलग अलग स्थानों में जाना पड़ता था। आजकल हमारे यहाँ कितने एक सुविधाजनक स्थिति है, सारी सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध हैं। भले एक बहुत सरल प्रकार का जीवन हो, फिर भी सुविधाएं तो यहाँ अच्छी तरह से उपलब्ध हैं, कोई डर नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने में कैसे होता था? हम कृष्ण और सुदामा के बारे में देखते हैं। कृष्ण और सुदामा एक बार जब वो गुरुकुल में थे, वो जंगल में गए थे लकड़ी ले आने के लिए अपने गुरु के लिए, तो अचानक तूफान आ गया और वो अटक गए जंगल में और वो नहीं आ पाए बाहर, और रात भर वहीं पे रहे। ठंडी थी, बारिश था, और दोनों एक साथ में रहे वहाँ पे। और फिर बाद में कृष्ण और सुदामा इस घटना के बारे में बातचीत करते थे। तुम्हें याद है जब हम गुरुकुल में रहा करते थे, हम जब ब्रह्मचारी थे, अभी तो दोनों गृहस्थ बन गए थे, लेकिन पुरानी यादें आ रही थी। हम जब ब्रह्मचारी थे, हम आश्रम में रहा करते थे गुरु के, और तब हम जंगल में एक बार गए थे, हम खो गए और रात भर हमने बाहर बिताया और हम बहुत डरे हुए थे, और रात भर गुरु और अन्य शिष्य जो हैं उनके वो चिंता करते रहे। और अगले दिन सुबह को जब बारिश बंद हो गई तो गुरु स्वयं अपने शिष्यों को लेकर इधर उधर ढूंढ रहे थे, फिर हमको ढूंढ लिया और वापस ले लिया। और फिर गुरु ने आशीर्वाद दिया कि मेरे लिए तुम लोग ने इतना कष्ट लिया है, मैं पूरा आशीर्वाद देता हूँ तुम लोगों को। तो गुरुकुल में रह के अभ्यास हो जाता था निडर होने का। जंगल में जाना। तो व्यक्ति फिर जब बड़ा हो जाता था, गृहस्थ हो जाता था, तो वैसे भी उसको एक तरह की निराशक्ति या विरक्ति की भावना आ जाती थी। इसलिए तो ये है कि जो राजा थे, जैसे भरत महाराज, इतने आसानी से अपने संसार को, राज्य को, ऐश्वर्य को, प्रजा को, परिवार को कैसे त्याग सके। भरत महाराज के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने उनकी जितने भी समृद्धि थी, जो भी संपत्ति थी, वो सब ऐसे त्याग दिया जैसे व्यक्ति विष्ठा त्याग करके वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से भरत महाराज ने अपने सारे ऐश्वर्य को विष्ठा तुल्य समझा और निकल गए वहाँ से। अभी हम संसार में अनुभव करते हैं कि लोगों को अपने धन आदि के प्रति कितनी तीव्र आसक्ति होती है, बहुत ज़्यादा। भले वो भक्त भी क्यों ना हो, लेकिन आसक्ति एक ऐसी चीज़ है जो आती ही आती है। और किसी को कहें कि अभी आप रिटायर हो जाइए तो नहीं करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि आजकल के नेता ऐसे हैं, या तो गोली से जब तक कोई उनको उड़ा नहीं देता है, या वो चुनाव में नहीं हार जाते तब तक वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो विरक्ति, ये वैराग्य, ये सब है ही नहीं। फिर ये भरत महाराज, फिर पांडव, राजा परीक्षित, अचानक से छोड़ के कैसे जा पाए। परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला को वो वकील के पास नहीं गए, ऐसा कुछ भागवत में वर्णन नहीं है। वो कोई डॉक्टर के पास नहीं गए, ऐसा भी वर्णन नहीं है। वो और किसी भगवान के पास भी नहीं गए, अन्याय हो रहा मेरे साथ में, मेरी गलती नहीं थी, मेरे खिलाफ ऐसे अन्याय हुआ है, और मैं भी भक्त हूँ, मैं भी श्राप दूंगा उस बच्चे को। वो बच्चा कौन होता है मुझे श्राप देने वाला, केवल 12 साल का बच्चा है। वो ऐसे सब कुछ सोच सकते थे, कर सकते थे, लेकिन तुरंत वो समझ गए कि ये भगवान की योजना है, भगवान की इच्छा है। अपने पुत्र को, जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाया, राज्यभिषेक कराया, तुरंत निकल पड़े। बस यूं ही कैसे संभव है ये, क्योंकि बचपन से तैयारी थी। बचपन से गुरुकुल में जाते थे, ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे, तो वैराग्य का प्रशिक्षण मिलता था सबको। पांडव भी ऐसे ही निकल गए। जब महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि सब जगह अशुभ लक्षण हैं, और अर्जुन भी काफ़ी समय से वापस आए नहीं द्वारका जो गए हुए थे, और अर्जुन जब आए तो अर्जुन ने वही खबर लाई जिसका डर महाराज युधिष्ठिर को था। क्या खबर थी वो? कि श्री कृष्ण स्वधाम चले गए। फिर महाराज युधिष्ठिर को समझ में आया, एक तो ये सारे अशुभ लक्षण सब जगह, दूसरी बात श्री कृष्ण चले गए, इसका मतलब है कलयुग आ गया। अब जब कलयुग आ गया, अभी हमें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपने भाइयों को लिए और द्रौपदी देवी को भी लिया, साथ में निकल पड़े। भाइया निकल रहे थे सारे भाई, युधिष्ठिर जा रहे थे, अर्जुन ने कहा मैं भी चलता हूँ, भीम ने कहा मैं भी चलता हूँ, ऐसे सारे भाई निकल पड़े। फिर द्रौपदी देवी ने कहा कि मैं अकेली कैसे रह सकती हूँ, मैं भी आऊँगी। तो चलते 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 वो हिमालय की ओर निकल पड़े। बस यूं ही एक क्षण में सब कुछ त्याग दिया। कैसे संभव था? चलते 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 जैसे एक लाइन में जा रहे थे, उधर युधिष्ठिर महाराज, उनके पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे भीम, भीम के पीछे नकुल, सहदेव और फिर द्रौपदी। तो चलते चलते द्रौपदी वहाँ नीचे गिर पड़ी, और बाकी भक्त तो इधर थोड़ा हड़बड़ा गए, बाकी जो उनके भाई थे इधर, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने पीछे भी नहीं देखा, चलते गए आगे ऊपर। तो किसी ने पूछा भाई ने कि द्रौपदी क्यों गिरी, गिरी मतलब अभी प्राण त्याग दिया वो गिर के उधर, क्योंकि वो आगे और नहीं चल पाई। वो ऊपर चढ़ते 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 जा रहे थे। हिमालय से और भी ऊपर जाने से फिर हम ऊंचे लोकों में जाते हैं, भुवरलोक आदि में हम चले जाते हैं, जहाँ यक्ष गंधर्व आदि रहते हैं। साधारणतः वहाँ मनुष्यों को प्रवेश नहीं है। फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि क्योंकि द्रौपदी के 5 पति थे, परंतु पक्षपात किया उसने अर्जुन के प्रति, अर्जुन अधिक प्रिय था, समान दृष्टि नहीं रखी 5 पति के प्रति, तो यह दोष था, इस दोष के कारण वो गिर पड़े। फिर आगे जाके सहदेव गिर पड़े। फिर अर्जुन ने पूछा कि सहदेव क्यों गिरा, बोले सहदेव को अपने विद्या का बहुत घमंड था, वो गिर पड़ा। आगे जाके नकुल गिर पड़ा, तो नकुल क्यों गिरा, अर्जुन ने पूछा युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर पीछे भी नहीं देखा, वो बात भी करते करते आगे देखते हुए जा रहे थे, अभी हम शरीर नहीं हैं, अभी हो रहा है ये सब, हम जा रहे हैं एक के बाद एक। नकुल क्यों गिरा, क्योंकि नकुल को अपने सौंदर्य का बड़ा गर्व था। आगे चलते 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 फिर भीम गिर पड़े। फिर अर्जुन ने पूछा भीम क्यों गिरे, वो प्राण त्याग दिया गिर के। तो युधिष्ठिर महाराज ने पीछे न देखते हुए कहा क्योंकि भीम को खाने की बहुत इच्छा थी, बहुत ज़्यादा खाते थे, बहुत बड़ा दोष था ये। और फिर चलते 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 युधिष्ठिर महाराज आगे जा रहे हैं, पीछे अर्जुन, अर्जुन गिर पड़े। गिरते गिरते गिरे तो अर्जुन ने गिरे हुए पूछा युधिष्ठिर मैं क्यों गिरा, बोला तुमने बहुत घमंड के कारण बहुत व्रत लिए, वचन लिए तुमने, मैं ऐसे करूंगा, जयद्रथ को सूर्यास्त के पहले मैं ख़त्म करूंगा, ऐसे सब व्रत लिए अपने घमंड के कारण, इसलिए तुम अभी गिर पड़े। और युधिष्ठिर महाराज आगे चलते गए। एक दृष्टि से ये क्रूर लगता है, ये ऐसी कोई घटनाएं हम सुनते हैं कि बहुत क्रूरता की घटनाएं हैं, एकदम से सब छोड़ के जाते हैं, मानो कि वो उनके अंदर पत्थर जैसे हृदय हो जाता है। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि उनको पता चलता है, वैसे भी ये सब भक्त हैं पांडव, उनको पता है हमें तो जाना है वापस कृष्ण के पास ही, जहाँ कृष्ण लीला करेंगे वहाँ हमें उपस्थित रहना है। परंतु वो संसार के लोगों को सिखा रहे हैं कि भले हम राजा क्यों न हो, विश्व सम्राट क्यों न हो, ये दुनिया को हमें छोड़ के जाना है। तो बचपन से ही ये वैराग्य का प्रशिक्षण सबको मिला। पांडव भी तो गए थे, और उनको वैसे भी 14 साल 13 साल तो वनवास तो मिला ही, अनुभव मिला, और उसके पहले भी वो वन में रहे थे। कब रहे थे आपको पता है, वनवास के पहले, द्यूत क्रीड़ा के बाद में उनको वनवास में जाना पड़ा 13 साल, और 1 साल अज्ञातवास में रहे 14 साल। उसके पहले भी एक बार वन में गए थे लाक्षाग्रह जलने के बाद, फिर वो उस बार भी गए थे, तो वो भी रहे, उनको भी अनुभव था। तो चाहे परीक्षित महाराज हो, पांडव हो, भरत महाराज हो, ऋषभदेव महाराज, कैसे छोड़ के चले गए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये एक मान्य शून्यता, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, भक्त का एक गुण होता है, मान शून्यता। मान शून्यता मतलब घमंड से मुक्त होना। उदाहरण देते हैं कि एक कलकत्ता के बहुत बड़े व्यापारी थे जिनका नाम था लाल बाबू, और ये लाल बाबू वो कलकत्ता में सब कुछ छोड़ के चले आए, और वहाँ पे वृंदावन में आके फिर वो भीख मांगते थे, माधुकरी करते थे, भिक्षा पे अपना जीवन बिताते थे, हालांकि वो इतने बड़े व्यक्ति थे कलकत्ता में। उस समय की बात है, एक 100 साल या ऐसे 80-90 साल पहले की बात है, उस समय उनके लाखों लाखों रुपए हुआ करते थे, और आज भी एक लाल बाबू मंदिर है वृंदावन में। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये है वैदिक सभ्यता, और जब हम ऐसे त्याग देते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि जहाँ आसक्ति होती है वहाँ दुख होता है। उसी प्रकार से ऋषभदेव महाराज ने भी अपने राज्य को त्यागा और वो ऐसे ही एक अवधूत की तरह इधर उधर घूमते रहे। लोग उनकी निंदा करते थे, लोग उनके ऊपर थूकते थे, कोई गाली देते थे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं की। वो आगे ऐसे निकलते गए। राजा भगीरथ ने भी ऐसे ही किया, अपने शत्रुओं के राज्यों में जाके भी भिक्षा मांग ली। कितना अपमान की बात है ना, जो हमारे शत्रु हैं उनके सामने हम कभी निम्न श्रेणी में ऐसे आके पेश करना नहीं चाहते अपने आप को, लेकिन वो गए। फिर प्रभुपाद जी ऋषभदेव महाराज का भी उदाहरण देते हैं, भरत महाराज का उदाहरण देते हैं। ये सब उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि कैसे विरक्ति उनको इतनी आसानी से आ गई। और क्यों आ गई विरक्ति आसानी से? क्योंकि बचपन से ही वैराग्य का प्रशिक्षण था। तो ब्रह्मचारी जीवन जो है ये एक विरक्त जीवन के लिए तैयारी है। जो हमारी आज तक आसक्तियां हैं उनको हम धीरे धीरे से काटते हैं। तो आश्रम में रह के, हालांकि अब जंगल नहीं है यहाँ पे, फिर भी समझना चाहिए कि हाँ इसको जंगल जैसा है, कम से कम थोड़े बगीचा तो है। और यहाँ आश्रम में रह रहे हैं, गुरुकुल में, तो वैसे ही निडर होना है हमें। प्रभुपाद जी एक कहानी बताया करते थे कि एक बार एक छोटा बच्चा था और घर से उसको रोज गुरुकुल में जाना पड़ता था, पाठशाला में। तो घर और गुरुकुल के बीच में एक जंगल था, तो जंगल पार करके जाना पड़ता था। तो जिस दिन पहले दिन जाना था तो बच्चा थोड़ा घबरा गया। बच्चे ने माँ से कहा, उसके पिता नहीं थे, केवल माँ अकेली थी, कि मैं बहुत घबरा रहा हूँ, वहाँ जंगल बहुत भयानक स्थान है, तो वहाँ जंगल में से जाने से कोई जंगली जानवर आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं डरता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल। तो फिर माँ कृष्ण की भक्त थी, उन्होंने कहा कि तुमको डरने की क्या बात है, तुम्हारा दोस्त है वहाँ, इसका नाम है गोपाल, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन मैं कैसे गोपाल को ढूंढूंगा, कैसे वो आएगा? बोला, जब तुम जाओगे जंगल में तो तुम गोपाल का नाम पुकारो और वो गोपाल आएंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा साथ देंगे। तो माँ का पूरा विश्वास था। तो देखिए, प्रचार ऐसे होता है, जब हमारे हृदय में विश्वास होता है तो हम सामने वाले के हृदय में भी विश्वास दिला सकते हैं। हमारे हृदय में विश्वास नहीं है तो हम दूसरों को कैसे प्रचार कर सकते हैं? दूसरों को हम ऐसे विश्वास कैसे दिला सकते हैं कृष्ण के बारे में? तो उस बच्चे के माँ के हृदय में तीव्र विश्वास था, श्रद्धा कि कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। रक्षिष्यति इति विश्वासो, ये शरणागति का एक लक्षण है। तो फिर वो बच्चा गया जंगल के अंदर, जैसे ही अंदर गया देखा भयानक अवस्था, वो डर गया। कभी कोई कोई जानवरों की आवाज़, कभी कोई क्या, कुछ हवा आ गई तो सब सारे पेड़ हिल रहे हैं, झरझर झर आवाज़, एक भयानक सी अवस्था। तो बच्चे ने माँ की बात याद की कि गोपाल को बुलाओ, वो तुम्हारा मित्र है, तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ज़ोर से उस बच्चे ने गोपाल कह के पुकारा और झाड़ियों के बीच में से गोपाल चले आए। बहुत सुंदर बच्चा, कि कौन, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारा नाम गोपाल है? हाँ, मेरा नाम गोपाल है। तो अच्छा, बहुत अच्छा, तो दोनों की दोस्ती अच्छी हो गई। और फिर जाते जाते उनको वहाँ जंगल के कोने तक छोड़ दिया और फिर गोपाल वापस चला गया और बच्चा स्कूल में चला गया। तो ऐसे रोज जब भी वो जंगल में आता, गोपाल का पुकारता, गोपाल आता, साथ में खेलते खेलते कूदते नाचते वो जंगल पार कर देते और फिर गोपाल वापस चले जाते जंगल में और वो बच्चा आगे अपने स्कूल में चले जाता। ऐसे रोज चलता गया। और फिर एक दिन सरस्वती पूजा थी, प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस दिन अध्यापक वगैरह सब सरस्वती देवी, जो विद्या की देवी है, उनकी उपासना की जाती है। तो गुरु ने कहा कि अभी घर से कुछ ना कुछ दक्षिणा लाना चाहिए। तो बच्चे ने कहा, मेरे पास, मेरे माँ के पास कुछ है नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है, कम से कम दूध तो लाओ। ठीक है दूध लाएंगे। आवश्यकता तो बहुत बड़ी थी, कम से कम 10-20 बाल्टी दूध चाहिए था, इतने सारे बच्चे थे, अन्यों को भी बुलाया गया था, बहुत से पदार्थ बनाने थे। तो बच्चा वापस गया माँ के पास कि हमें दक्षिणा चाहिए, सरस्वती पूजा का अनुष्ठान मनाया जा रहा है। तो माँ ने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो गरीब हैं, दूध भी नहीं है क्योंकि गाय नहीं हमारे पास, तो दूध नहीं है, लेकिन हाँ गोपाल तुमको दे देगा, जितना तुम्हें चाहिए गोपाल से मांगो, गोपाल दे देगा। तो बच्चा गया, फिर से गोपाल आया, फिर उस बच्चे ने बताया कि आज ऐसी ऐसी समस्या है। फिर गोपाल ने कहा कोई समस्या नहीं, नो प्रॉब्लम, ये ले लो। एक मटका दिया, मटके में दूध था। तो बच्चे ने कहा कि इतने से दूध नहीं, हमको गुरु डांटेंगे क्योंकि 10 बाल्टी दूध चाहिए, वो बोलेंगे तुमने इतना ही लाया। तो गोपाल ने उत्तर दिया कोई बात नहीं, ये दूध है जितना चाहिए उतना हो जाएगा। तो बच्चे ने श्रद्धा रखी, ये बच्चे का गुण था। बच्चा क्यों निडर हो गया, क्योंकि पहली बात तो उसके माँ के शब्दों में जो कि भक्त थी, कृष्ण भक्त की वाणी में पूरा विश्वास था कि गोपाल हैं और गोपाल मेरी रक्षा करेंगे। रक्षिष्यति इति विश्वासो अवश्य रक्षिबे कृष्ण। तो ये पहली बात थी। दूसरी बात, जब पुकारा उस बच्चे ने गोपाल के लिए तो हृदय से पुकारा, ऐसे ही यांत्रिक ढंग से नहीं पुकारा, हृदय से पुकारा, श्रद्धा से पुकारा, इसलिए गोपाल प्रकट हुए। तो हम जब बुलाते हैं कृष्ण अमृत और हरे कृष्ण करते हैं, लेकिन गोपाल प्रकट नहीं होते हैं, तो वो हमारी श्रद्धा विश्वास की बात है। जितनी ज़्यादा हमारी श्रद्धा और विश्वास, उतनी ही शीघ्रता से और तीव्रता से भगवान प्रकट हो जाएंगे। तीसरी बात, जब गोपाल ने कहा कि ये छोटा सा मटका है दूध का और इसमें जितना दूध चाहिए उतना मिल जाएगा, इस बात में भी विश्वास रखा बच्चे ने। बच्चे ने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, भौतिक बुद्धि, ये कैसे हो सकता है, इतना है दूध, वो बोलते हैं 10 बाल्टी दूध इसमें आ जाएगा, 10 बाल्टी तो इतना है और ये तो इतना है। तो हम भौतिक बुद्धि लगा के सब विश्लेषण करते हैं चीज़ों का, इसलिए आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब इंद्रियों के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो शास्त्रों के बातों के विरुद्ध प्रतीत होती हैं, तो हमें शास्त्रों के बातों को स्वीकार करना चाहिए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण का मूल्य तब है जब वो शास्त्रों के वचनों से मिलता जुलता है। प्रत्यक्ष प्रमाण पूरी तरह से बुरा नहीं है, हालांकि हम बोलते हैं कि शब्द प्रमाण श्रेष्ठ प्रमाण है और प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, इसको हम निम्न दृष्टि से देखते हैं, परंतु इनका भी महत्व है। जैसे हम भगवान का दर्शन करते हैं ना, तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, इंद्रियों के द्वारा ही तो हम देखते हैं, अनुमान लगाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत से अनुमान का भी उपयोग करते हैं, लेकिन शास्त्रों पर आधारित होता है। तो ये बच्चे ने कृष्ण की वाणी में, गोपाल की वाणी में श्रद्धा रखी, क्योंकि शास्त्र मतलब क्या है, भगवान की वाणी है। तो बच्चा ले गया अपने गुरु के पास, गुरु ने कहा अरे इतना ही दूध लाए, इससे क्या होगा। तो बच्चे ने कहा नहीं नहीं ये पूरा हो जाएगा 10 बाल्टी। तो गुरु को गुस्सा आया, ऐसे डाल दिया एक बाल्टी में, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, एक बाल्टी भर गया, दो बाल्टी भर गए, तीन भर गए, चार भर गए। तो गुरु को आश्चर्य होने लगा, जब जितना दूध चाहिए था उतना उस मटके में से निकला, छोटे से मटके में से। तो फिर गुरु ने पूछा ये दूध मिला कहाँ से तुमको, गोपाल ने दिया, कौन है वो गोपाल, कहाँ रहता है। तो बच्चे ने सारी बात बताई, फिर गुरु को पता चला कि ये बच्चा कितना विशेष है, बल्कि मैं सोच रहा मैं इसका गुरु हूँ, वास्तव में ये मेरा गुरु है, ये साक्षात इसने कृष्ण का दर्शन किया है, कृष्ण ने इसकी प्रत्यक्ष रूप से रक्षा की है, तो ये कहानी प्रभुपाद जी बताया करते थे। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि वो बच्चा, वो भी एक ब्रह्मचारी था, गुरुकुल में जाता था, तो वो निडर क्यों हो गया? जब तक वो कृष्ण पे विश्वास नहीं रखता था तब तक डरता था। जैसे ही कृष्ण के ऊपर विश्वास रखा वैसे ही निडर हो गया। कृष्ण आए उसके पास रक्षा के लिए, क्योंकि उसने एक भक्त के वचनों पे श्रद्धा रखी थी कि कृष्ण हैं, कृष्ण को बुलाओ कृष्ण रहेंगे और वो रक्षा करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमें भी प्रभुपाद जी के वचनों में विश्वास रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वाम नाम नामिनो हो, तो भगवान नाम नामी हैं और उनके नाम, नाम और नामी, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो जब हम कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं तो उस समय प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण वहां उपस्थित रहते हैं। तो जब हरि नाम लेते हैं तो कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां सुरक्षा है, तो फिर कोई डर नहीं। जहां सुरक्षा है वहां कोई डर नहीं। तो ब्रह्मचारी आश्रम में रह के हमें भी इसी प्रकार की श्रद्धा का अनुशीलन करने का प्रयास करना चाहिए। श्रद्धा तीव्र होने से आदमी निडर बन जाता है। जब हम संशय आत्मा बन जाते हैं, संशय जहां होते हैं तो डर पैदा हो जाता है, लेकिन श्रद्धा जब पूरी होती है तब हम अच्छी तरह से रहते हैं। जो भगवान हमारे साथ करेंगे वही अच्छा रहेगा। तो ब्रह्मचारी आश्रम में कई चीजें सीखने होती हैं, जैसे कि सरलता, तपस्या, शास्त्रों का ज्ञान, भक्ति के साधन, भक्ति के नियमों का पालन, ये सब करना है। साथ साथ में हमारी श्रद्धा को अटूट बनाने का प्रयास करना है। ये श्रद्धा का अनुशीलन हमारे भक्ति का लक्षण है। जितनी ज़्यादा हमारी श्रद्धा उतनी ज़्यादा हमारा अधिकार है भक्ति के लिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भक्त अधिकारी श्रद्धा अनुसारी, कि श्रद्धा के अनुसार हम भक्ति के अधिकार को समझ सकते हैं। जिसकी श्रद्धा ज़्यादा है उसका अधिकार भक्ति के लिए अधिक है, और सबसे तीव्र श्रद्धा जिसकी है वो शुद्ध भक्त कहलाता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने का ये मतलब, हमारी श्रद्धा, हमारी विश्वास बढ़ाना कि कृष्ण हैं और कृष्ण की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, और कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, कृष्ण ही कर सकते हैं और वो अवश्य करेंगे। तो ऐसे विश्वास हमारे अंदर हो जाता है तो हम निडर हो जाते हैं। विकट से विकट परिस्थिति में से निकलना है तो भगवान का आश्रय लेना है। इसका अभ्यास हमें अभी से करना चाहिए ब्रह्मचारी आश्रम से। एक भक्त बता रहे थे कि एक बार वो पुस्तक वितरण के लिए बम्बई के रेलगाड़ी में गए थे। आप में से जो बम्बई के रेलगाड़ियों से परिचित हैं, आप जानते हैं कि भीड़ कैसी होती है। एक बार, आप पहले बात तो ये है कि आप अंदर नहीं जा सकते, इतनी भीड़ होती है शाम के समय या सुबह, और अंदर चले गए तो निकल नहीं सकते, और निकलना है तो जैसे भीड़ निकलेगी वैसे आपको साथ में ढकेला जाएगा, लेकिन आप जहाँ चाहते हैं वहाँ शायद नहीं निकल पाए। तो ये भक्त नए थे उस समय बम्बई में, किसी न किसी तरह से चल पड़े ऊपर, अंदर घुस पड़े रेलगाड़ी में, और जब उतरने का समय आया तो वो दरवाजे से थोड़ी दूर थे, और बहुत धक्का मार के घुस के इनके बीच में इधर उधर करके वो बहुत मुश्किल से संघर्ष करके किसी न किसी तरह से वो दरवाजे पे पहुँचे, और एक पैर नीचे रखा, दूसरा पैर भी रखने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि उनकी थैली जो है वो अटक गई उधर लोगों के बीच में। अब वो नीचे और कंधे पे टंगा हुआ है लेकिन थैली वहाँ है, तो या तो थैली छोड़ दे या वो थैली को खींच के ले ले। अब छोड़ना भी मुश्किल क्योंकि किताबें हैं बहुत उसमें, और खींचना भी संभव नहीं क्योंकि सब लोग खड़े हैं, वो बहुत अच्छी तरह से उसको अटका के रखा है। तो तुरंत उसके मन में विचार हुआ कि कृष्ण का नाम लें। उसने जोर से कृष्ण का नाम लिया चिल्ला के। तो जैसे ही चिल्लाए जो लोग वहाँ खड़े थे इतने हड़बड़ आ गए कि आसानी से वो बैग निकल आया आसानी से। फिर वो अपने आप चले गए कि जहाँ कृष्ण का नाम लेंगे वहाँ सारे समस्याओं का समाधान हमारा हो जाता है, रक्षा पूरी तरह से हो जाती है। इसलिए हमें पूरा श्रद्धा रखना है। रोहिणी तनय प्रभु की तरह 30 साल की उम्र में भगवान हमें वापस ले जाना चाहते हैं तो ठीक है, भगवान हमें 300 साल तक रखना चाहते हैं तो भी ठीक है। हमारा काम एक ही है, कृष्ण की सेवा करना, चाहे हम इधर करेंगे या उधर करेंगे। प्रभुपाद जी बोलते थे कि खेती में एक यंत्र होता है जिसको ढेकी कहते हैं, जहाँ उसको मलनी कहते हैं महाराष्ट्र में, मलनी कहते हैं ना, उसको निकालते हैं तो उसको उसके बीज वगैरह निकालते हैं। तो प्रभुपाद जी को बोलते थे कि वो ढेकी है वो स्वर्ग में भी जाएगा तो वही काम करेगा, अनाज को लेके उसको पीट के उसको दाने निकालेगा। ऐसा नहीं कि स्वर्ग में गया तो ढेकी कुछ अलग चीज़ करेगा, नहीं, ढेकी तो ढेकी है, उसका स्वभाव ऐसे ही रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं, चाहे वो इधर है या उधर, पृथ्वी में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में, वो कृष्ण की सेवा ही करेंगे। नारायण पर हा सर्वे न कुतश्चन विभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। तो शिव जी कहते हैं ना कि भक्तों का संग जो नारायण पराह है, सर्वे जितने भी भगवान नारायण या कृष्ण के भक्त हैं, वो बहुत न कुतश्चन विभ्यति, कभी डरते नहीं है वो, अपि तुल्यार्थ दर्शन, उनके लिए समान है, जितने भी स्थान है वो सब उनके लिए समान है। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, नरक लोक हो या मुक्ति की अवस्था हो, उनके लिए एक समान है, क्योंकि हर अवस्था में वो कृष्ण की सेवा करते हैं। एक जगह तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण का जो भक्त होता है वो नरक भी जाने के लिए तैयार होता है यदि वहाँ प्रचार के लिए अवसर मिले तो। यदि कृष्ण चाहे तो वो नरक भी जाएगा और वहाँ प्रचार करेगा। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तव में शारीरिक ढंग से शरीर या भक्त कहाँ भी क्यों ना हो, नरक में, स्वर्ग में, लेकिन भक्त वास्तव में ना तो स्वर्ग में रहता है, ना नरक में रहता है, ना वो पृथ्वी लोक पे रहता है, भक्त कृष्ण के साथ रहता है। जहाँ भी वो रहे वो कृष्ण के साथ रहता है, ये मूल बात है। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक अटल अटूट विश्वास हृदय में पैदा करने के लिए ये ब्रह्मचारी आश्रम का वातावरण बहुत ही अनुकूल है। इसलिए इस भावना का अनुशीलन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। निडर कैसे होना चाहिए, निडर कैसे होते हैं, हमारे बल के आधार पर नहीं कि मैं कितना बलवान हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं मेरी रक्षा कर पाऊँगा, नहीं, वो तो मूर्खता है, वो साहस नहीं है। लेकिन भगवान में विश्वास रखना कि भगवान रक्षा करेंगे, वो श्रद्धा है। तो निडरपन, जो निडरता आती है, निर्भयता, वो भगवान के कृपा और भगवान के शक्तिमान होने के सत्य पर आधारित होता है, न कि हमारे शक्ति पे, हमारे योग्यता पे इत्यादि। जब बाहर की दुनिया में रहते हैं तो हमारा मन इतना भ्रमित हो जाता है, ऐसे श्रद्धा को बढ़ाना मन में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आश्रम में और कुछ है ही नहीं, केवल भक्त हैं, कृष्ण हैं और सेवा है बस। इसलिए बहुत ही अनुकूल वातावरण है ऐसे श्रद्धा को हमारे हृदय में जागृत करने के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? कितने ब्रह्मचारी कुल मिलाकर यहाँ?
28।
बहुत अच्छा, एंड काउंटिंग मतलब बढ़ते जा रहे हैं और भी बढ़ रहे हैं। नहीं, कोई प्रश्न है? लीडर बनना है।
भगवान के ऊपर श्रद्धा।
हाँ, निडर।
तो हम कभी देखते हैं कि हमारे को होता है तो कभी कभी अहंकार आते हैं, तो इससे कैसे बचना चाहिए?
समझना चाहिए कि अहंकार रह गया तो भगवान उस अहंकार का चूर करने में बहुत सक्षम है ना। कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान की चक्की से बचता है ना। भगवान की चक्की चलती है तो इतनी पक्की चलती है कि बराबर सबको ठीक करके रखती है। कोई भी व्यक्ति बचता नहीं है, है ना। तो चक्की से थोड़ा पिसना वो उतना आनंदप्रद नहीं होता है, कष्टप्रद होता है। तो जो कष्ट से बचना चाहे वो समझेगा कि खुद ही इसको त्याग ले अच्छा है, नहीं तो भी चक्की में जाना पड़ेगा, है ना। तो अपने बुद्धि से अपने आप को समझा सकते हैं कि चक्की में क्यों जाना चाहिए। वो भी तो भगवान की कृपा होगी, लेकिन इस तरह की कृपा क्यों जबरदस्ती लेना, जब स्वेच्छा से हम इसको त्याग सकते हैं बुद्धि से समझ के। तो ऐसे ही करना उचित है। ठीक है, यहाँ भी आज बहुत सेवा है आप सबके लिए। बड़ा मंदिर निर्माण हो रहा है, बहुत सी चीज़ें आप करेंगे अभी आगे चल के। आप सबकी सेवा का ये फल है, यहाँ ये वृक्ष अभी बहुत बड़ा हो रहा है, तो आप सबका योगदान इसमें है। और शुरुआत से रघुपति प्रभु, रोहिणी कुमार प्रभु और अनेक भक्त, आश्रम के अंदर के भक्त, बाहर के भी भक्त, आप सब ने बहुत परिश्रम किया है। आपके सेवा का मीठा फल अभी पक रहा है, थोड़े ही दिनों में पूरा पकेगा। केवल 10-15 दिन बचे हैं पकने के लिए पूरी तरह से, है ना। तो अच्छी तरह से यहाँ सेवा प्रचार आदि करते रहिए और आपस में बड़े अच्छे भक्ति के संबंध, परस्पर संबंध में ध्यान दीजिए। ठीक है,
हम देखते हैं कि भक्ति की शुरुआत में जो उत्साह रहते हैं, जैसे भगवान की सेवा के बारे में, तो हरिनाम के बारे में या तो प्रचार के बारे में, तो बाद में थोड़ा जैसे देखते हैं कि आश्रम का वातावरण या तो अपना आरोग्य जो भी है प्रोजेक्ट के या ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो बाद में उसका थोड़ा धैर्य और निश्चय कम हो जाता है, साधना भक्ति में थोड़ी ढेरापन आता है। तो ये स्वाभाविक है क्या? इट कैन बी डेवलप्ड बाय
मुख्य वस्तु है संतुलन। यदि हमें किसी चीज को टिका के रखना है तो संतुलन चाहिए। असंतुलित अवस्था में कोई वस्तु दीर्घ काल तक टिक नहीं सकती। तो हमारी भक्ति को टिका के रखना है तो संतुलन चाहिए। किन चीज़ों में? हमारी साधना में, सेवा में, हमारे स्वास्थ्य में, सब चीज़ों में। यदि कोई व्यक्ति कहेगा हम केवल साधना करेंगे तो वो टिक नहीं सकेगा। इतनी रुचि क्या है हमारे अंदर कि हम दिन भर बैठ के 64 माला करेंगे, 100 माला करेंगे, फिर दिन भर पढ़ेंगे, कितने समय तक हम ऐसे करते रहेंगे। हरिदास ठाकुर की नकल तो हम नहीं कर सकते। दूसरी ओर कोई कहेगा मैं तो केवल सेवा करूँगा। यदि हम साधना ठीक से नहीं करेंगे तो वो सेवा करने की सही भावना खत्म हो जाएगी, फिर वो काम सेवा काम बन जाएगा, सेवा नहीं, और फिर धीरे 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 से वो सेवा बोझ नगले लगेगा। हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं बढ़ती रहेंगी, फिर भक्ति भावना कम होती जाएगी। दूसरी ओर तीसरी ओर सेवा भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा, तो स्वास्थ्य बिगड़ गया तो फिर ना साधना होगा ठीक से, ना सेवा ठीक से होगा। दूसरी ओर कोई कहेगा कि क्या मैं केवल स्वास्थ्य का ख्याल रखूंगा, साधना नहीं सेवा नहीं, क्या मतलब फिर कोई फायदा है? अच्छा, स्वास्थ्य स्वस्थ जीवन जीना हमारे जीवन का उद्देश्य तो नहीं है? फिर तीनों का संतुलन होना चाहिए। बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है स्वास्थ्य साधना सेवा क्रम से, तीनों चीजें, इन बीच इनके बीच में संतुलन बिगड़ जाएगा तो थोड़े समय के लिए ठीक है, चल सकता है, लेकिन अधिक समय के लिए हम असंतुलित अवस्था को खींच के रखेंगे तो फिर हमारी भक्ति टिक नहीं पाएगी ठीक से कम ब्रह्मचर्य का जीवन टिक नहीं पाएगा। फिर तनाव बढ़ जाता है, तरह तरह की समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है, हम भी नियोफाइट है तो हम सब श्रद्धा बढ़ाने के लिए हम केवल गुरुजनों के आदेश का पालन करते हैं, कुछ नई बात नहीं करनी है। जो श्रद्धालु लोग हैं उनका संग करने से हमको भी श्रद्धा मिलती है। दूसरी बात, जो हमें बताया जाता है कि हमको जो जो करना है वो हमें करना चाहिए, जप करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, सेवा करना, नम्र रहना, ये जितने भी चीज़ें हैं जैसे हमको प्रभुपाद जी ने उनके ग्रंथों में आदेश दिए हैं वैसे वैसे हम करेंगे तो श्रद्धावान बन जाएंगे। श्रद्धा से श्रद्धा उत्पन्न होती है, इसलिए श्रद्धालु भक्तों के बीच में रहने का जो अवसर है बहुत ही दुर्लभ है। देखिए, जो भक्त बाहर रहते हैं वो कितने सोच रहे होंगे कि ये ब्रह्मचारी भक्त कितने भाग्यशाली है कि सदैव 24 घंटे उनको ऐसे वातावरण में रहने का अवसर मिला है जहाँ श्रद्धालु लोग रहते हैं। हमारे अनेक अन्य भक्तों को बाहर रहना पड़ता है, उनके आसपास में ऐसे कई लोग होते हैं जो श्रद्धालु नहीं होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम में ये तो आसान है, सभी लोग ही श्रद्धालु हैं, इसलिए तो आए हैं रहने के लिए, तो इसका पूरा लाभ हमें लेना चाहिए। और ऐसा कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे अन्यों की श्रद्धा और हमारी श्रद्धा भी बिगड़े नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री गोविंद धाम की जय। श्री गोविंद धाम ब्रह्मचारी आश्रम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।